दो टॉपिक लिखते हैं, एक हिलाने का और दूसरा एक से ज्यादा शासन। ये टॉपिक ऐसा है कि सुनने में भी बड़ा मजा आता है, अगर से करना बड़ा मुश्किल है। और इस वक्त के ऊपर हमारी हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया, इसमें उन्होंने इसको भी उठाया है, बहुपत्नी की एक से ज्यादा शादी के मसले में। इस मसले में एक बात मैं आपको पाएगी कहीं, हम सरकार को भी ये बात कहना चाहते हैं, तो करोड़ रुपये का सवाल सबसे पहले ये है कि एक से ज्यादा शादी करना इस्लाम मजहब के अंदर तरजियात हो, कंपलसरी हो, जरूरी हो, ऐसी कुरान की एक आयत अभी नहीं सक जाए। ये बड़े बड़े वालमा बच्चे हैं, पूछ लीजिए उनसे, एक आयत के हमको ऐसे बदला देगा, एक हदीस ऐसी बदला देगा, शरीयत का एक हुक्म ऐसा बदला देगा कि एक से ज्यादा शादी करना फर्जियात हो, वाजिब हो, जरूरी है। जब हमारी शरीयत में एक से ज्यादा शादी करना फर्जियात नहीं है, जरूरी और कंपलसरी नहीं है, तो उसका मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाना कहां तक सही है, कहां पर नशा। अब बात समझिए कुरान की आयत, अल्लाह सुना है, के हो माता बल तुमने नशा, फन के हो माता बल तुमने नशा, मतला वसुला सवरुका। शरीयत ने एक से ज्यादा शादी करने को जायज कहा, तो ये जायज है। मैं आपको सवाल करूँ, कितनी सारी चीजें जायज है आज तक हमने कभी सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं, आज भी नहीं लगाया, कितनी सारी चीजें जायज है। क्या दुनिया में जितनी जायज चीजें हैं वो सब शरीयत में जितनी जायज है वो सब करना ही करना है? तो जो चीज शरीयत में सिर्फ जायज निकला है, उसकी वजह से मुसलमानों को और इस्लाम को और मजहब को और शरीयत को काउंटिंग करना है, उसके ऊपर जो है कितना खड़ा करना है, ये कहां तक की सही और अकल मंदिर की बात है। दूसरी बात, हमारे मजहब के अंदर जो एक से ज्यादा शादी का भी है इजाजत नहीं, उसकी भी इतनी खतरनाक शर्त है, इतनी खतरनाक शर्त और कंडीशन है कि अगर वो कंडीशन अगर आप लोग सुनो और समझो तो कभी कोई आदमी दूसरी शादी करने की हिम्मत भी न करेगा। ये मेरे सामने कठिन है, अशरफुल सवाल है, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली खानवी रहमतुल्लाह, हजरत ने जरूरत से दूसरी शादी की, तो हजरत की बीवी कहने लगी, कुछ और लोगों ने भी कहा कि हजरत आपने दूसरी शादी की तो अब आपके तमाम मौलवी लोग दूसरी शादी ना करना चालू कर दे रहे, आपने दूसरा निकाह किया तो आपने को दूसरी शादी का दरवाजा खोल दिया, तो हजरत ने क्या जवाब दिया? अजीब और गरीब जवाब दिया। मेरे प्यारे, मैंने दूसरी शादी करके दूसरी शादी का दरवाजा खोला नहीं है, बल्कि दूसरी शादी का दरवाजा बंद कर दिया। लोगों ने कुछ अजरत लगे से जब अशरफ शरीफ को देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ है तो दो गुरु के हक कितने भारी होते हैं, दो गुरुओं को निभाना कितना भारी होता है, और इंसाफ कितना जरूरी है, सभी को हिम्मत मिल जाएगा इसमें शादी करने में। अब भगवत से शादी के ऊपर में आपको अभी पूछता हूँ, हजरत से नजदीक चल रहे ब्राह्मणी का रहने वाला आलाम है जो तरबूज लेके आएगा और आकर के हजरत को देता है, हजरत ये तरबूज दो लाया है, दो कैसे? तो कहने लगा वो गांव के आदमी अपनी गांव की दुकान में आ गया, अच्छा लगा नहीं मेरी दो बीवी है थी इसलिए दो तरबूज लाया, दोनों बीवी को एक एक दे दिया। हजरत ने फरमाया ये दोनों तरबूज एक जैसे बराबर बराबर तुझे कैसे माने? तो उसने कहा कि अरे अशरफ अली मैं जानता हूँ कि तू इंसाफ बहुत करता है, इसीलिए मैं दोनों तरबूज वजन करके लाया हूँ बहुत मेहनत से, दोनों तरबूज का वजन बिल्कुल बराबर बराबर है, एक ग्राम का भी फर्क नहीं है। क्या वजन बराबर है? आगे का सवाल कि दोनों तरबूज की मिठास भी बराबर है, मुझे कैसे पता चला? हजरत ने हुक्म दिया दोनों तरबूज को बीच में से कटवाया और दोनों तरबूज में से एक एक टुकड़ा दोनों बीवियों के घर के अंदर भेजा। जब ये मालूम उस गांव के रहने वाले आदमी ने देखा तो उसने ये कहा मानो अशरफ अली तू तो दो शादी करके बड़ी में लगता है कि हर चीज में दो दो और भी बराबर बराबर करना, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ। तो हजरत ने उसके ऊपर जवाब में इरशाद फरमाया भाई दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ में बर्दाश्त कर लूं, दोनों बीवियों के इंसाफ कर लेती ये बहुत अच्छी बात है, आप जगत के ना इंसाफी की सजा भुगतने से नहीं कि अगर ना इंसाफी होगा तो अल्लाह तआला सजा होगी और वो सजा बड़ी खतरनाक होगी, इसीलिए मैं दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ भुगतने में वो बहुत अच्छी बात है। क्या तकलीफ क्या आखिरत की सजा? हदीस पाक के अंदर आता है कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया वला तबीउ कुल्ल अल-मैत फतज़रूहा फल-मुअल्लमाहा वला तबीउ कुल्ल अल-मैत फतज़रूहा फल-मुअल्लमाहा। एक आदमी है जिसकी शादी है तो क्या होता है? जो नई आती है वो बहुत पीछे हुआ है, अब नई नई नहीं आई है तो वो पुरानी जो बेचारी एक्सपायर डेट है उसको तो ऐसा समझा कि आपके ऊपर अल्लाह फरमाते हैं हदीस में हुक्म है कि एक बीवी को हो जाओ और दूसरी बीवी पर ध्यान ना दो और पुरानी बीवी को अधर्म लगती हुई छोड़ दो तो कयामत के दिन ये शोहर ऐसी हालत में आएगा कि उसकी बॉडी की पूरी एक साइड पर लकवा लगा हुआ हो, ऐसी हालत में वो अल्लाह के दरबार में आएगा और ना इंसाफी की सजा अपनी जगह के ऊपर बाकी रखे। हजरत वाला खान ने आपके बारे में एक बात सुनी, अजीब बात इरशाद फरमा के दोनों बीवियों की बारी। देखो हमारे यहाँ जो शादी की इजाजत है दूसरी जरूरत के वक्त पर, कोई जरूरत पेश आ गई ऐसी जरूरत और मजबूरी में दूसरे निकाह की सलाह में इजाजत है और उसके लिए कंडीशन ये रखी दोनों बीवियों पर बराबर इंसाफ करना, कपड़े भी बराबर, मकान भी बराबर, खाना भी बराबर, यहाँ तक के तुम्हारे पास कोई चीज आ गई तो वो भी दोनों को दोनों के अंदर बराबर हो जाएगा। मौलवियों को हदिया की ताकत पर चलाते हैं, सुन्नत है नबी की हदिया कबूल करना, तो लिखा है इसे अशरफ के जमाने में तीन हिस्से करते हैं, जो भी हदिया आता तीन हिस्से, एक हिस्सा अपने लिए रखते और दो हिस्से दोनों बीवियों के घर के अंदर भेज देते, दो मकान बनवाए, दोनों मकान दोनों बीवियों को मालिक बना के दे दिया, दोनों बीवी को मालिक बना के दे दिया। है आप कोई? है दुनिया का कोई कानून जो यूं कहे कि बीवी को अपना मकान हदीये में गिफ्ट करने दे? अरे कोई जनस देने तैयार नहीं होता। जनस में ये कहते हैं कि खाली उसे इस्तेमाल कर लेता, मालिक की तो ससुराल वाले को वो बिचारी बीवी पूरी जिंदगी खिदमत करे। जनस के दो तेरे सोने होना तैयार है। और ये हमारे इस्लाम की मुकद्दस तालीम, अपनी बीवी को मकान हदीये में दे दे, अल्लाह को उनको सवाब दे। हजरत ने दो मकान, दोनों बीवी को एक एक मकान हदीये में दिया, पर एक तराजू रखता है। हजरत ने शादी किया, उसका नाम ही रखा मीज़ान ए अदल। मीज़ान ए अदल इंसाफ की तराजू, कोई भी चीज आती उसमें रख के तोल के आधा आधा करके दोनों घर में भेज देते। कपड़े भी किसी बीवी के घर में नहीं रखते, खानपा में रखते। इसीलिए कि एक बीवी के घर में कपड़े रखेंगे तो उसी को होगा। मेरे घर में अगर कपड़े नहीं रखते, लगता ऐसा है कि उधर ध्यान चलाता है। इसीलिए कपड़े भी हजरत किसी के घर में, दोनों के घर को छोड़ करके कपड़े भी रखते थे हजरत खानपा के अंदर। और अजीब बात, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। ये इस्लाम की तालीम है। इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन जिस औरत की बारी होती है, उस दिन दूसरी बीवी का ख्याल करना वो भी मैं इंसाफ के खिलाफ काम करता। कि जिस दिन भी औरत की बारी होगी, मैं उसके घर सोने जाऊंगा और मेरे विचार में मेरे ख्याल में दूसरी बीवी को नहीं लाऊंगा। इसलिए जिस बीवी की बारी है उसके अलावा दूसरी बीवी का ख्याल करना उसको भी मैं इंसाफ के खिलाफ काम करता। कितनी जबरदस्त बात का ये हमारे इस्लाम कहता है। फिर तुम इसके ऊपर इल्जाम लगाओ कि इस्लाम के अंदर जो है लोगों को ये एक चीज ज्यादा दुनिया करने की इजाजत दी और जो है मरीजों को जो है आवारा और आजाद बना दिया। आप जानते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया परीक्षित तुम अल्लाह का हुकुम। ये भी तो है आगे कुरान के अंदर याद रखो। सवाल है नफ्सी आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिया, उसमें रिसर्च लिखा है यूरोप के डॉक्टरों का। मैं उनकी बात पसंद करता हूं कि मर्द और औरत में दोनों में अल्लाह की कुदरती तौर पर ताकत मर्द में ज्यादा रखती है। अब मर्द में ताकत क्या था, औरत में ताकत कम, तो वो मर्द अपनी ताकत को सिर्फ एक औरत के जरिए से कैसे पूरी करेगा? ये भी एक जरूरत है दूसरे निगाह की। और ऐसा होता है औरत बीमार हो गई, बच्चा हो गया, इन दिनों के अंदर मर्द क्या करे? और सुन लो, जब औरत बीमार होती है, बच्चा घर में होता है, ऐसे ही दिनों में शोहर के तकवा का इम्तिहान है कि कितना तकवा वाला है। इसलिए कि इन दिनों में औरत के साथ तो हो नहीं सकता, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अब ऐसे हालात में एक आदमी गुनाह कर, जिना कर, उसको तुम चलाओ और दूसरे निकाह की इजाजत ना दो और उसको कहो कि इस्लाम के अंदर बहू पर जुल्म, तुम औरतों पर जुल्म है, तो कहां के इंसाफ की बात है? आज आप देखेंगे कि हमारे मजहब ने हमको खास तौर पर हुक्म दिया खाना कपड़ा मकान रात सोने के अंदर की तरह लगा देता। याद रखना ऐसा कोई मसला शरीयत में नहीं है कि नई बीवी आई तो उसके साथ सोने जाओ और पुरानी बीवी के यहाँ सोने नहीं जाओ। ये भी जुल्म है। अगर नई बीवी आई तो उसके यहाँ एक रात सो तो पुरानी बीवी के यहाँ एक रात सो, नई बीवी के यहाँ एक हफ्ता सो पुरानी बीवी के यहाँ एक हफ्ता सो, नई बीवी के यहाँ एक महीना सो पुरानी बीवी के यहाँ एक महीना सो। इंसान उसमें कोई जुल्म और ज्यादती की जरूरत नहीं जा सकता। और आगे इरशाद फरमाया इंसाफ नहीं कर सकोगे इसका यकीन एक नियम के जरिए से चला लो। और आगे जो बात कही उसकी तो इस जमाने में कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसीलिए इसी पर करना पड़ेगा कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते दो तीन चार आदमियों के दरमियान, तो फिर सिर्फ एक जमीन के जरिए से अपनी जिंदगी गुजार लो। याद रखो दो तीन चार बीवी का लेना तो आसान है, लेकिन इनको निभाना, उनके हुकूक को अदा करना, ये बहुत मुश्किल चीज है। और आप न्यूज पेपर पढ़ते हो नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट सर्वे करवाती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले सर्वे करवाते, यूनाइटेड नेशन वाले सर्वे करवाते, सर्वे रिपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यूनाइटेड नेशन की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, हरेक आज ये कह रही है कि दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा हो रही है, मर्द की तादाद कम हो रही है। तो बताओ अगर ये औरतों की तादाद ज्यादा है और तुम ये कहो कि हमारे पुरुष ही शादी करें, तो बेचारी औरतों का होगा क्या? उनको तुम जीना का दरवाजा खोलना चाहते हो? कानून की पाबंदी गलत चीज का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। गलत चीज वजूद में आएगी तो हराम औलाद वजूद के अंदर आएगी। और मैं आपसे समझता हूं एक बात कि हमारे हुकूमत ने एफिडेविट की 38 पेज की एफिडेविट है, मेरे पास दो उसकी कॉपी, हम कोई बात ऐसे नहीं करते। और ऐसी उसके अंदर कानपुर की भूल भुलैया लिखी है, मैंने बड़े बड़े हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों को दिया, मुझे समझाओ उसके अंदर दफा क्या क्या लिखा है। तो कहीं उसके अंदर एक बात की नजर नहीं आई कि कोई ऐसी बात इन्होंने एफिडेविट में लिखी हो कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान है, हिंदू है, बुद्ध है, ईसाई है, कितने सारे मजहब के मानने वाले हैं, कौन से मजहब वालों ने कितनी शादियां की, एक से ज्यादा कितने मर्द हैं जिन्होंने एक से ज्यादा शादी की, ऐसी तो कोई बात एफिडेविट में है ही नहीं। काश कि हुकूमत को एकदम इंसाफ से सर्वे कराकर के उसके आंकड़े बाहर पास दिए और लोगों के सामने डिक्लेयर करके कि एक से ज्यादा बीवी करने वाले कितने मुसलमान और कितने दूसरे मजहब के मानने वाले हैं। 1985 के अंदर जो सर्वे हुआ था हमारे मुल्क के अंदर, वो सर्वे रिपोर्ट के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक से ज्यादा शादी करने वाले सबसे कम मुसलमान, सबसे कम मुसलमान हमारे पास प्रूफ मौजूद है। 1985 की सर्वे रिपोर्ट सबसे ज्यादा कम एक से ज्यादा शादी करने वाले मुसलमान और दूसरे मजहब वाले हमसे बहुत आगे। फिर अकेले मुसलमान पर ये इल्जाम लगाना कि एक से ज्यादा दुनिया करते फिरते, दरअसल इनको इनके मुंह में पानी आ रहा है इसलिए ये मुसलमान अकेले अपने मजहब से शादी ना होता है क्योंकि दूसरे लोग के अंदर कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं है, पाबंदी किस वजह से? और देखिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ये जो सिलसिला रखा, तो ये सिलसिला एक ऐसी चीज है कि इंसान कभी हालात में, मजबूरी में, बीमारियों में, फंस कर से ऐसे तंग हालात पर आ जाता है, गरीब एतबार से कि उसको मजबूरी के अंदर दूसरा निकाह करना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि पहली बीवी बेचारी काम करने के खिदमत करने के काबिल नहीं है, अब घरेलू कामकाज का मसला आ रहा है, ये एक बड़ी हिम्मत है। तो हम लोग हमारी शरीयत के इस कानून पर पूरे पूरा इत्मीनान और यकीन रखते हैं कि शरीयत ने जो एक से ज्यादा शादी करने को जायज रखा गया الحمدللہ وہ قانون بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ کنڈیشن اور شرط اتنی سخت رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے آسانی کے ساتھ اس کی ہمت نہیں کر سکتا. اس کے لیے منی پاور چاہیے، مسلس پاور چاہیے، تب جا کر کے آدمی جو ہے اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت درد دل سے اپیل کروں گا، اگر ضرورت ہے تو دوسری شادی کرو، نکاح کرو ضرورت ہو، لیکن اللہ کے واسطے زنا کا دروازہ مت کھولو. اور ساتھ میں دوسری شادی کرنے والوں سے اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے دونوں بیویوں میں انصاف کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو. اگر تم حق ادا نہیں کرو گے تو تمہارے ظلم کی وجہ سے اسلام بدنام ہوگا، اسلام بدنام کرنے کا ذریعہ تم ہو گے. اور جو آدمی اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے گا وہ آدمی کبھی بھی دنیا کو اپنے سکھ چین سے زندگی نہیں گزار سکتا، کبھی سکھ چین سے نہیں لے سکتا. آج بہت سے مسلمان ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھتا ہے. بہرحال ہماری شریعت میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کو جاری رکھا، کوئی فرضیات قانون نہیں ہے اور اس کے لیے بہت سخت قانون اور شرطیں ہیں. یہ کوئی کھانے کا کھیل نہیں ہے اور یہ چیز اسلام میں کوئی نہیں ہے. اگر ہمیں پہلے تو پتا نہیں کس کو برا لگا ہے اوپر سے نیچے تک، دعویٰ کریں گے کہ ایک ہی بیوی ہے. اور اگر دیکھنے میں ایکسٹرا سائڈ کے اندر وہ تو کپڑے کی طرح بدلتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے. اور مسلمان اگر ضرورت کے وقت قانون دوسری شادی کرے تو اس کے اوپر کتنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کے اس قانون کے اوپر ہم کو صحیح یقین عطا فرمائے. میں آپ سب حضرات سے ایک سوال ضرور کروں گا، پورا مجمع پورے ایمان کے ساتھ جواب دے، بتلاؤ ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی ایسا قانون ہے کہ جس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ. ارے بتاؤ، ضرورت ہے؟ ہر گر نہیں، ہماری شریعت کے ایک قانون بھی ایسا بتلاؤ ہے کہ جس میں کوئی چینجنگ کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ارے بولے بولے ہاتھ اچھا کرو، ہے کوئی ضرورت؟ ابھی جیت نہیں، یہ مکمل شریعت ہے، قیامت تک مکمل ہے، کوئی اس میں تبدیلی اور پھیرپھاڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو ہمارا ایمان ہے اور اللہ کا بھروسہ ہے اور دعا ہے مالک سے کہ ان شاء اللہ کوئی شریعت کے قانون کو بدل بھی نہیں سکتا. کوئی ہماری شریعت کے قانون کو نہیں بدل سکتا. ابھی ایک اور موضوع مجھے دیا گیا ہے، نکاح کے بعد اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو طلاق کا نفقہ جو ہے خرچہ صرف عدت کے دن کے اندر دینا ہوگا، عدت کے بعد خرچہ دینے کا بیوی کو نہیں. اب یہ بھی ایک بڑا ڈرنے مسئلہ، 1985-86 کے اندر ہمارے دیش میں اس پر زبردست آواز اٹھی. ایک بدھی اور جس کا ایک بال بھی سفید ایک بال بھی کالا ہے وہ گئی سپریم کورٹ کے اندر. اللہ جانے وہ شاہ بانو وہاں سے آ گیا بوڑھی آ گیا اور وہ گئی کہ شادی کے بعد طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی، پھر بھی مجھے خرچہ اپنے شوہر کے پاس چاہیے. الحمدللہ پورے ملک میں مسلمانوں نے اس وقت کے اوپر آواز اٹھائی کہ ملک کی پارلیمنٹ کے قانون پاس کرنا پڑا اور یہ طے کرنا پڑا کہ مسلم اور کمزور صرف عدت تک رکھتا اور خرچہ ملے گا، اس کے بعد مان لے یہ پاس کرنا پڑا. اگر جو ملک کی کورٹوں میں ایسے بہت ایگزامپل سامنے آئے کہ کورٹیں اس کے خلاف جو ہے چکاتے دیتی ہے، ججمنٹ دیتی ہے، اس کے ایک ہی بچیوں جو ہے چکاتے پورے ملک کے اندر آئے. लेकिन सवाल यह है कि आज जो लोग बात उठा रहे हैं कि इज्जत ठीक हो जाए तो बाद भी औरत को दर्जा मिलना चाहिए, तो हमारा सवाल ये है कि निकाह टूट गया, तलाक हो गई, इज्जत खत्म हो गई, अब किस देश पर किस बुनियाद के ऊपर वो औरत दर्जा मांगने की हत्या है? कौन सी दुनिया, कौन सा देश जब निकाह नहीं था, निकाह के बाद इज्जत भी खत्म हो गई, सारे सबक खत्म हो गए, अब किस देश के ऊपर उसको दर्जा दिया जाए? तो भेद हो तो हमको बदला है। पहला सवाल हमारा ये है, कयामत की सुबह तक कोई जवाब नहीं दे। दूसरी बात, हमारे दीन के अंदर जो है ना, शादी करने के बारे में औरत का रिश्ता अपने माँ बाप के खानदान से बाकी रहता है। हमारा मजहब ये नहीं कहता कि शादी के वक्त सब दे दिया था, अब वारसे में भी कोई हिस्सा नहीं। अभी मुफ्ती हुए सब आपको मीराज के मसले सुना रहे थे, सुन लो, शादी के अंदर करोड़ रुपये का बाप ने दिया, लड़की का हिस्सा बाप के माल में बाकी रहेगा, उसके अंदर जो है कोई हक खत्म नहीं है, ये बाकी रहेगा। चुनाचे एक औरत इज्जत के बाद बाप के माल में से भी मीराज मिल सकती है, माँ के माल से भी मीराज मिल सकती है, बाप-दादा भाई के हिस्से में से भी मीराज मिल सकती है, बहन के हिस्से से भी मीराज मिलती है। और ये कहा गया कि दिल पर अगर ये औरत का इंतकाल हो जाता है, और जिन जिन लोगों को मीराज का हिस्सा मिल सकता था, तो मीराज के हिस्से के बकदर नफ्ते के जिम्मेदार वारसा भी होंगे, और परवरिश का खर्चा भी उसको मिल सकता है। अगर शोहर का लड़का है और लड़के को 7 साल की उम्र तक ये परवरिश करने के हकदार है, और लड़की को बालिग होने तक ये कर रखा होगा परवरिश के हकदार है, तो उसका खर्चा भी उसको मिल सकता है। इज्जत में तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर वो हमल वाली प्रेग्नेंट है तो हमल के अंदर से बच्चा हो वहां तक खर्चे की वो हकदार है। नहर बाकी था तो नहर वसूल करने के हकदार है, और जो माल शोहर ने दिया निकाह वाली जिंदगी में उसको वापिस न मांगे, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो दिया वो उसी के पास रहे। इतना सारा माल बारिश के पास जमा हो जाए, अब बताओ कि उसको आगे चलकर खर्चे का कोई मसला ही नहीं आता, कभी नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कुरान में अल्लाह ने फरमाया, धन के हुए आयाम वहन के हुए आयाम, शादी के बाद जिनकी शादी है तो जल्दी जल्दी शादी ना हो, सरकार जो इसी तरह लिखती है अभान्य प्रणाम, तो मैं कहता नीचे इसको कुमार का पढ़ना हो, अभान्य प्रणाम इससे इम्पोर्टेंट है कुमार ने पढ़ना हो, जिनकी भी शादी नहीं हो गई या शादी होने के बाद खत्म हो गई तो उनकी शादी ना हो, तलाक के बाद इज्जत के बाद घर में बैठी क्यों रहे, जा जल्दी से शादी करो। नबी के जमाने के अंदर औरतें बेवा होती थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एक औरत बेवा होती, फटाफट दूसरे निकाह कर लेती। बेवाओं को घरों के अंदर दिखाया नहीं जाता था, फौरन जो है शादियां करवाई जाती थी। और देखिए, अगर शोहर के जिले में खर्चा जरूरी करार दिया तो बेचारा शोहर क्या करे, तलाक बीवी को देने के बाद उसने दूसरा निकाह किया तो जो नई बीवी आई उसका भी खर्चा, में जो तलाक लेके इज्जत पूरी के चक्कर के चले गए उसका भी खर्चा, तो वो मर्द जिंदा रहेगा कि बर्बाद होकर मर जाएगा? एक जो घर में उसका भी खर्चा और जो इज्जत पूरी कर चुकी उसका भी खर्चा, तो ये बेचारा ये महंगाई के जमाने के अंदर लाएगा कहां से इतना सारा पैसा? और दूसरी बात ये कि इज्जत भी खत्म होने के बाद इतना जरूरी हो गए कि नहीं शोहर को खर्चा देना ही देना, देना ही देना, तो शोहर के बीच में औरत के लिए नफरत पैदा हो जाएगा। اور وہ کبھی نہ کبھی اس عورت کو اللہ نہ کرے مارنے یا مروانے کے پیچھے پڑ جائے گا. یہ نہیں یہ عورت نکاح سے نکل گئی پھر بھی اس کو خرچہ دے گا, عزت بھی خرچہ دے گا. ہے آج دنیا میں ایسے عورت جو بیچارے تنگ آ کر کے نعوذ باللہ مارنے پر کی کوشش کرتے ہیں, یہ تو نفرت بڑھانے والی چیز ہے. اور اسلام نے جو یہ بات فرما دی بس اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ جب تک عزت ہوگی وہاں کا کلچر نہیں ہے, اس کے آگے عزت کے بعد کوئی کلچر نہیں مل سکتا. اور جو بات ہماری دلی بہنوں کو کہیں گے وہ انشاءاللہ ان کو بھی کہیں گے کہ اگر کوئی اور تمہاری شوہر میں فیصلہ کر لے کہ عزت کے بعد بھی خرچہ تم کو لینے کا, تو سن لو دنیا کی کوئی کوٹ ان کی فیور میں فیصلہ کرے اس کی وجہ سے وہ خرچہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا, حرام ہی رہے گا. دنیا کی عدالت کے فیصلہ کرنے سے شریعت کا کوئی حکم حرام سے حلال نہیں ہو جاتا, اس کے لیے وہ خرچہ رہنا حرام ہی رہے گا اور وہ اس کو کھا بھی نہیں سکتی. یہ صاف صاف ہدایت شریعت کی ہے. اسی لیے میرے دینی بھائیوں ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہے. لیکن سب سے بڑی بات کہ بھائی یہ طلاق کے بعد کا خرچہ, عدت کے بعد کا خرچہ یہ کب پیش آئے گا؟ جب مسلمان دنیا طلاق کو استعمال کرے تب تو پیش آئے گا. اگر اپنی نیت کر لیا کہ بھائی زندگی کی گاڑی ہوتی رہتی ہے سنبھال لینی ہے, بین گاڑی کا ہے ریکارڈ دو بار دو آ جائے نا تو اس کو سنبھال رہا ہے. دنیا کی زندگی ہے کتنی, 60-70-80 سال کی, یہی دین جو آج پسند نہیں آخرت میں ہو رہے ہیں سردار بنا رہے ہیں. اسی لیے چلا جو ہے طلاق کی بات نہ کریں گے. ایک نارا گاؤں گاؤں گلی گلی محلہ محلہ گھر گھر عام کرو, وہ نارا میں آپ سے بولتا ہوں, کہو پہلی طلاق ابھی نہیں, بولو پہلی طلاق ابھی نہیں اور پہلی کے بعد کبھی نہیں, پہلی طلاق ابھی نہیں اور پہلی کے بعد کبھی نہیں. اگر اس کے اوپر ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ سب سارے چکر بھی باقی نہیں رہیں گے. اللہ ہمیں ہماری شریعت پر یقین عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.